يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور دیکھیں آپ پہلے بھی ہم خطوات پڑھ چکے ہیں، اب بھی خطوات، یہ نہیں کہا گیا لا تتبعوا الشیطان، یہ بھی تو ہو سکتا تھا شیطان کے پیچھے نہ، اس کے خطوات کیا مطلب خطوات، اس کے فٹ سٹیپس کے پیچھے پہ نہ چلو، یعنی شیطان کے کچھ فٹ سٹیپس ہیں، وہ فٹ سٹیپس جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں برائی تک. انسان جب ایک ایک سٹیپ پہ چلتا ہے تو پھر وہ برائی تک پہنچتا ہے. شیطان کبھی بھی آپ کو پہلے دن آ کے یہ نہیں کہہ دیتا کہ آؤ آ کے یہ گندی چیزیں دیکھو، آؤ یہ کپڑے بالکل ایسے واہیات بے حیا کپڑے پہنو، آؤ آ کے پھر یہ چیزیں ریڈ کرو، آؤ ان مجلسوں میں بیٹھو جن میں گندگی ہے یا بدکاری کی طرف آؤ، ایسے نہیں کہتا. بلکہ اس کے قدم ہیں، اس کے سٹیپس ہیں، ایک فرسٹ ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے. فرسٹ سٹیپ وہ وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے جہاں پہ انسان کہتا ہے نا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، وہاں سے اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ تو کیا ہو گیا اگر حجاب تھوڑا نہیں بھی لیا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اچھا چلو تھوڑا سا اگر نیک ڈیپ ہو گیا، گلا ڈیپ ہو گیا تو کیا فرق پڑا، تو تھوڑی سی شلوار زیادہ اونچی ہو گئی تو کیا ہوا، اور چلو یہ ڈراما دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، یہ ڈرامے میں تو کچھ نہیں ہے نا، فلم تو نہیں نا دیکھ رہے، ڈراما ہی ہے نا. وہ آپ کو کبھی بھی اینڈ والی چیز پہلے نہیں دکھائے گا. خدا کے لیے یہ سمجھیں، وہ ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں نا تو کیا ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا نہیں ہوتی، وہ صرف پہلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ بڑا تیز ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو پہلے دن کسی کو کہہ دیں گے وہ کہے گا نہیں 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 میں نے تو نہیں یہ کرنا، وہ سٹارٹ اس سے کرتا ہے. دیکھ لیں نا، اب وہی جیسے میں آپ کو کہا کہ ایک وہ وقت تھا ہماری نانیوں دادیوں کے وقت میں، قسم خدا کی وہ اگر آ کے یہ آج کی ٹائم کی چیزیں دیکھ لیں نا، وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں، وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی کہ یہ چیز ہے. ایون اور کیا، اتنی پیچھے جاؤں میں اپنے کالج وغیرہ کی بات بتاتی ہوں کہ ہم نے کبھی یہ گیز اور یہ والا ورڈ بھی نہیں سنے تھے، ورڈ بھی نہیں سنے تھے کہ یہ بھی کوئی لفظ ہوتے ہیں. تو اسی کسی کا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ اچھا ایسا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا لفظ زبان پہ نہیں لاتے تھے کبھی کسی سے نہیں. اور آج دیکھو کتنا عام ہے، بچے بچے کو پتا ہے کیا ہے یہ چیز، ایل جی بی ٹی کیا ہے، یہ وہ، بچے بچے کی زبان پہ. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی چینج آئی. یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں نا تو تب ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا ہماری نانیوں دادیوں کے وقت کے اندر، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ سر سے دوپٹہ بھی سر کے اپنے جیٹھ دیور سسر وغیرہ کے سامنے بھی نہیں اتارتی تھی، اور آج کہاں چلے گئے دوپٹے، گلے میں بھی نہیں ہے. تو کہیں تو پہلا سٹیپ ہوا تھا نا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر یہاں تک پہنچے نا. کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی عورت اٹھ کے مردوں کے سامنے ڈانس کرے، کوئی لڑکی ڈانس کرے، اس طرح کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ. تو آج وہ آ کے یہ شادیاں دیکھیں، ہم نے بہت پرانے زمانے کی نہیں بات کر رہے، بہت کوئی اینشنٹ ٹائم کی نہیں بات کر رہے، اپنی پڑ نانیوں نانیوں پڑ نانیوں کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. کہ اس وقت تو ایسی کوئی چیز حیا بہت زیادہ تھی، حیا کے ساتھ بات کرتے تھے، اتنی حیا ہوتی تھی کہ گھر کے بزرگوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ان کے سامنے ایک ادب تھا، اونچی آوازیں نہیں ہوتی تھی. آج کوئی پتہ نہیں، باپ بھی بیٹھا ہوا، بچیاں بھی بیٹھی، ان کے سامنے یہ سین تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کبھی، اور یہ ناچنا گانا ان کے سامنے. آج باپ خود بیٹھا ہوا، اس کی بیٹی اس کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے شوہر کا اتنا ادب ہوتا تھا، سب ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا، ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک طوفان آیا جو کہ آہستہ 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 آپ کو یہاں تک لے آیا. اور یہ پنڈلیاں کھولنا یا سلیو لیس پہننا، یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ، برکے پہنتے تھے. لیکن آج اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اتار دیے نا، وہ برکے اتار دیے، ہم نے یہ سب کر دیا، تو یہ ہم ماڈرن ہو گئے. آج ماڈرن نہیں ہو گئے، ہمارا ڈاؤن فال ہے یہ. یہاں پہ تو نہیں رکتا نا، وہ پہلے बुरका उतरवाता है, फिर हिजाब उतरवाता है, फिर पहले हिजाब को पीछे पीछे कर करके फिर इतना पीछे चला जाता है कि गिर ही जाता है वो, फिर कभी ऊपर आता ही नहीं सर के। फिर उसके बाद वो गले से भी जाने शुरू होता है, फिर कहते हैं आई गले में भी क्या लेना, इसके साथ को तो मैचिंग है ही नहीं, तो चलो छोड़ो ही। तो एक दिन में नहीं वो कराता, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये कर लिया तो क्या हो गया, फिर ऐसा ऐसा पूरा मेकअप होना ही शुरू हो जाता है। नहीं मैं वो तो नहीं पहनती, बुर्का तो नहीं पहनती, अब चादर तो नहीं लेती, फिर लूज कपड़े पहन लेती, फिर वो लूज आहिस्ता आहिस्ता टाइट होने शुरू हो गए। फिर अब तो मजा ही नहीं आता ना जब तक के वो, मैं वो लफ्ज भी नहीं लाना चाहती अपनी जुबान पे जिसको वो लोग आम कहते हैं SEXY, कि ये लफ्ज के जब तक ऐसा कपड़ा ना हो तब तक अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं अल्लाह माफ करे कि औरतों की जुबान से सुना कि वो साड़ी क्या साड़ी जिसके अंदर ब्लाउज ही छोटा ना हो, रिवीलिंग ना हो, जिसमें आपका जिस्म नजर आ रहा हो और जो टाइट हो, सीना भी साफ साफ पता चल रही है, पूरी बॉडी का भी पता चल रहा है, क्या सा फिगर है आपका, फिगर ना नुमाया हो तो मजा ही क्या आया। और उसके साथ फिर हम मर्दों की मजलिस के अंदर जाएं तो मुझे बताएं कि क्या होगा, फिर क्या उसमें से क्या खैर निकलेगी, कितने मर्दों की नजरें एक औरत के ऊपर जाती हैं, कितने मर्दों की नजरें आवारा हुई, कितने मर्दों को मजबूर कर दिया कि वो नजर उठा के देखें, और ये हमारे लिए बहुत बड़े फखर की बात है कि देखो मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूं। तो यही तो बदकारी की तरफ ले जाने वाली चीजें, इस्लाम ने इनको बंद कर दिया, इन रास्तों को बंद कर दिया, क्योंकि ये रास्ते एंड अप होते हैं इन चीजों पर। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि एक मर्द और औरत कभी भी अकेले ना हो, कभी अकेले ना हो, वरना तीसरा वहां पे शैतान होगा। हम इसको हरज ही नहीं कोई समझते, फिर ये कह दिया पर्दे में रहो ताकि वो उसकी नजर खराब ना हो, उसका घर तबाह ना हो। एक औरत का घर तबाह हो सकता है जबकि दूसरी औरतें बन समर के आती हैं कि उसका शौहर किसी और औरत को देखेगा इसका घर खराब हो जाएगा। उस मर्द को बदकारी की तरफ आमादा किया इस औरत ने। जब औरत एक घर से निकलती है तो फिर क्या होता है, कितने अगर वो बेपर्दा है कितने ही मर्दों की उसके ऊपर नजरें पड़ी, और हम नहीं जानते कौन किस तरह देख रहा है। और इसीलिए इस्लाम ने कहा अपनी नजरों को झुका के रखो, सबसे पहले ये कहा, और शैतान ने सबसे पहला काम यही कराया कि बदनिकाही, नजरें आवारा करती। अब नजर कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है। जब एक न्यूज कास्टर भी बन समर के पूरा मेकअप करके बैठी होगी, नजरों की क्या हिफाजत हो रही है, और आगे से आगे फिर मामलात हैं। ऐसी शायरी आज हो रही है कि वो भी जज्बात को भड़काती है, इंसान उस धुन में आ जाता है और फिर उसके ख्यालात कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो देखें इस सारी चीजें, ये एक तूफान है जिसकी रोकथाम जरूरी है, ये एक तूफान है जिस जो नहीं अगर रुकेगा ना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी नस्लें आगे देखेंगी। हमें रोकना है लेकिन हम और खुलते ही चले जा रहे हैं, खुलते ही चले जा रहे हैं। आप देखें आज से 20 साल पहले जो चीजें नहीं होती वो आज हो रही हैं, 30 साल पहले जो चीजें नहीं होती थी वो 20 साल पहले नहीं हो रही। आप इस तरह देखें ना, पीछे से पीछे जाते जाएं तो ये चीजें नहीं थी, और हर 10-15 साल बाद और नई से नई, नई से नई चीजें, और अब तो इतनी तेजी आ गई है कि हर आए दिन सुनो तो एक नई चीज होती है। फेसबुक पे वो चीजें लगाएंगे, अपने ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करेंगे जिसमें अपने खुद बन समर के खड़े हों, ऐसी वीडियोस ऐसी फोटोज अपनी शादियों के लेंगे तो सारे फिर गैर महरम भी देखते हैं। कोई महरम गैर महरम की तो तमीज रह ही नहीं गई ना, वो हमें कुछ से जो फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई महरम है या गैर महरम है, जैसे हम घर में बैठे हैं वैसे ही उठ के बाहर चले जाते हैं, तो उसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाप के सामने भी वैसे ही आते हैं, हस्बैंड के सामने भी वैसे ही आते हैं, दूसरे आदमी के सामने भी वैसे ही आते हैं, कोई एहसास नहीं है हमें कि कोई कोई इस्लाम ने कुछ बताया है कि देर इज अ डिफरेंस, या कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि गैर महरों के सामने ज्यादा संवर के जाते हैं वो, जो जिसमें पूरी गैदरिंग्स है, दावतों में साथ बैठे हुए हैं, शादियों में साथ बैठे हुए हैं, हर जगह साथ बैठे हैं। हम मुझे बताएं कि वहां पे उतना तो हम घर में भी नहीं तैयार होते, तो ये कहाँ रुकेगा बताइए आप। ये कुरान पढ़ने वाले नहीं इस तूफान के आगे बंद बांधेंगे तो कौन बांधेगा, फिर मत शिकायत किया करें हाय देखो ऐसे हो रहा है, हाय देखो ये हो रहा है, क्या हाय हाय हमारी, अगर हमें ये नहीं, हमने इस माशरे में कोई चेंज नहीं लेकर आनी, हमने खुद नहीं उठना जो पढ़ रहे हैं, तो कौन लाएगा चेंज? नहीं, क्या करें फिर उस तरह पे, हम मजबूर हैं, क्या करें इस बारे में मजबूर हैं। कब तक आपकी मजबूरी है? ये कोई और नहीं भुगतेगा, याद रखिए ये। मैं आप मेरे से ये बात लिख लें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आइंदा आने वाले वक्त में और बुरे होंगे। आज आप एक चीज को कह रहे हैं ना, हाई ये हो गया, थोड़े दिन बाद वो हाई भी खत्म हो जाएगी, थोड़े दिन बाद आपको वो बात ना कॉमन लगने लगी। जैसे मैंने अभी आपको एलजीबीटी का बताया, ये तो चीजें कभी कुछ सुनने में भी नहीं आती थी कि ये भी कोई चीज होती है। क्या क्या चीजें आज हम देख रहे हैं, इससे आगे बढ़ के और फितने होंगे। क्यों अपनी नस्लों को भी तबाह करना चाहते हैं? और ये हमें बातें दकियानुसी लगती हैं कि ये कुरान ये कह रहा है, ये तो वो मौलवियों की बातें हैं, ये तो दरस वालियों की बातें हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो, और ये तो बैकवर्ड लोगों की बातें। हाय, हमें भी ना कोई बैकवर्ड कह दे तो ठीक है, इस रास्ते पे चलते जाएं। आप देखेंगे वो जो आज भुगत रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा वर्स भुगतना पड़ेगा। फिर ना शिकायत करना, आज अगर औरत खड़ी होकर नाच रही है ना आदमियों के सामने, तो फिर ना शिकायत करें कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, हाय आदमियों को आज क्या हो रहा है, ये क्यों कर दिया, वो वैसा क्यों हो गया, इसका घर क्यों खराब हो गया, उसका उसके साथ क्यों, शादीशुदा लोग भी शादीशुदा लोगों के साथ उनके भी ताल्लुकात हो रहे हैं, क्यों ये हो रहा है, रेप के केसेस क्यों हो रहे हैं महरम रिश्तों के अंदर। मैं तो ये सुनती हूँ चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें, ये आज के हमारे माशरे के अंदर हो रही हैं। महरम रिश्तों की भी नहीं वो इज्जत का पास रहा, और हम क्या चाहते हैं? हमें कब समझ आएगी, कब अकल आएगी? और ये बात करना तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बस कर दें। क्योंकि जो भी हम अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, जहां जहां भी तोड़ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। इज जस्ट अ स्टेप, ये जस्ट एक खुतवा है, शैतान आपको ल्योर कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा ना। वो इतने भी ना तुम बनो एक्सट्रीमिस्ट, नहीं, ये याद रखें, वो एक खुतबा है शैतान का, वो लाजमी आपको इससे अगले पे लेकर जाएगा। कभी हो नहीं सकता, चाहे आज नहीं कहेगा आपको, इससे भी तीसरे स्टेप पे चले जाओ, अभी सिर्फ नंबर वन पे लेके जाएगा। फिर वो नंबर वन पे जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, फिर अगले अपने स्टेप पे लेके जाएगा, फिर उस पर कंफर्टेबल जाएंगे, फिर तीसरे पे लेके जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में बुरके नहीं उतर गए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप होना शुरू हुआ। एक दिन में नहीं, ये सारी जो फहाशी है एक दिन में नहीं फैल गई है, ये भी स्टेप बाय स्टेप हुआ था। एक दिन था कोई किसी ने ऐसा सोचा, फिर उसके बाद दूसरे दिन उससे बड़ी चीज उसके लिए मामूली बन गई, तीसरे दिन उससे बड़ी चीज मामूली बन गई, और अब तो सभी मामूली है, ये फिल्में ये ड्रामे ये इनके टॉपिक्स ये सब चीजें मामूली बन गई हैं। अब वी आर यूज टू इट, अब हम कंफर्टेबल हैं इसके साथ, इन चीजों को अपने घरों में देखना, ऐसे म्यूजिक सुनना, ऐसा नाच गाना। आज आप किसी को जाकर कहें ये म्यूजिक नहीं करो, तो वो कहेगा तुम पागल हो, कहेगा इसकी अकल फिर गई है, वो कहेगा ये तो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, वो कहेगा इनको तो छोड़ो ही। आज ये हाल हो गया, ओके, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और जब किसी कौम के अंदर ऐसी चीजें फैल जाएं, तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो और क्या होगा, जब यहाँ पे कहा गया दर्दनाक अजाब है उनके लिए जो पसंद भी करते हैं इसको, कि वहाशी फैले। आप देख लें, आप वैलेंटाइन पे एक रेड फूल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और सब जगह उसके साइन। तुम्हारा कब से ये हो गया वैलेंटाइन, कब से ये महबूब और महबूबा वाला चीजें हो गई, और इतनी आम। आज से मेरे ख्याल जब हम कॉलेज वगैरह में होते थे, इससे हमें तो पता भी नहीं था वैलेंटाइन कोई चीज होती है, कितनी कॉमन हो गई। देख नहीं रहे आप तबाही को, देख नहीं रहे आते हुए तूफान उठते, देख नहीं रहे, फिर भी नहीं संभलते, फिर भी सोचते हैं ये बेकार चीजें हैं, ऐसे ही हमें बताया जा रहा है, खुतवात हैं ये शैतान के। फिर इसीलिए वो एक दिन वक्त आएगा जिसकी पेशीन गोई आप सल्लम ने की थी, कि एक मर्द होगा औरत के साथ बदकारी कर रहा होगा और लोगों को जा रहा होगा, तो कहेगा कि तुम एक तरफ हट के ही कर लो, ये इतना कॉमन हो जाएगा। ये लोग तो दीन ईमान वाले नहीं है, इनको इनको छोड़ दें आप, लेकिन हमें क्या हो गया, हिंदुओं का भी कल्चर हमारा नहीं है ना, उनका दीन ईमान कुछ है, वो अगर नंगे हों नाचें या जो मर्जी करें, वो उनकी उनकी तबाही है, उनकी भी तबाही कोई कम नहीं हुई। लेकिन अगर हम उनको देखना शुरू कर दें, हम और जो भी दीन लोग हैं उनको अपना कल्चर बना लें, वो सोचेंगे ये हम भी करें, तो हमारी अकल मारी गई है। जबकि हमारा कुरान बताता है कि इसके ऊपर दुनिया और आखिरत में अजाब है दर्दनाक, फिर भी हम इस चीज को फैलाएं और हम कहें इसके बगैर तो मजा ही नहीं है, इसके बगैर क्या फन होगा, हमारा फन क्या हो गया, फहाशी, उसके बगैर हमें मजा नहीं आता, ना किसी गैदरिंग में मजा आता है, ना कोई एंटरटेनमेंट हमारी पूरी होती है, क्योंकि हमारा जौक इतना गिर गया है। बाज जगह पे अल्लाह ताला माफ करे, मतलब कितनी हद तक हम गिर गए, उन्होंने कभी अगर सेग्रीगेशन कर दी, औरतें और मर्द अलग अलग हो गए तो मजा ही क्या आएगा, यानी मर्दों का मजा अब ये रह गया कि वो औरतों को देखे, उसमें उनको मजा आएगा, अल्लाह हु अकबर। और जवाल क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जागेंगे, हम कुरान पढ़ते जाएं, सूरह नूर पढ़ते जाएं, और फिर हमारे वही रंग ढंग रहेंगे, तो कब हम समझेंगे, ये आयतें बस ऐसे ही हैं पढ़ने के लिए। तो माशरे को चेंज चाहिए, अगर हम पूरा माशरा नहीं बदल सकते, कम से कम अपने आप को और अपने घर को तो बदलो, जहां तक हमारी हमारी पावर है वहां तक तो पहुंचो, ऐसे दोस्त तो बनाओ जो आपके हम ख्याल हो, जो आपकी तरह इन खुतुवात से बचना चाहते हैं, ताकि मिल के कम से कम आप एक अपने इर्द गिर्द तो ऐसा माहौल कर लेना, और क्या कर सकते हैं, कहीं भाग के जंगलों में तो हम जा नहीं सकते, हमें इसी सोसाइटीज में रहना है ना, हम अपने घरों को तो पाक करें, हम अपनी नजरों को बेबाक होने से तो बचाएं, जहां में हमें पता है कि हम गुनाह लेकर वापस आएंगे इस मजलिस से, हमारी नजरें भी गुनाह कमाएंगी, हमारे कान भी गुनाह कमाएंगे, हमारी जुबानें भी गुनाह कमाएंगी, वहां पे हम क्यों बैठे इसका एहसास ही नहीं। बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया इस पार्टी में, बहुत मजा आया, बहुत वाकई मजा आया, क्योंकि इतना गुनाह अपने ऊपर कमा लिया कि वो हमें पता भी नहीं होता हमारे आमालनामे में हमने कितना गुनाह समेट लिया इस एक मजलिस में जाने से, और हम कहते हैं बहुत मजा आया। वो तो तब जब हम अमाल खोए लेंगे फिर पता चलेगा कि कितनी मजे की वो मजलिस थी, फिर इंसान हसरत करेगा, अफसोस करेगा, मैं क्यों गया इस मजलिस, क्यों मैं वहां पे बैठा, लेकिन आज हमारे मजे हैं, वो बड़ा फन है, ऐसी तो वो जगहों पे हमें मजा आता ही नहीं जहां पे ये सब ना हो। अल्लाह अकबर। और फरमाया व मई यत्तबे खुतुवात शैतान फ इन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर। किसको मजा आता है फहशा में, शैतान को, जो शैतान के खुतुवात कदमों पे पैरवी करेगा ना, तो शैतान तो उसको फहाशी की तरफ ही लेकर जाएगा और मुनकर की तरफ लेकर जाएगा, बुराई, मुनकर मैंने बताया ऐसी बुराई जिसको कोई भी इंसान बुराई कहेगा कि ये बुराई है, और फहाशी आपको पता चल गया बेहयाई की चीजें, उसको तो मजा आता है, किसको, हमें मजा आता है या शैतान को, शैतान को बड़ा मजा आता है, वो इस तरफ ही बुलाता है। याद नहीं है हमारे माँ बाप का जन्नत में लिबास उतरवाना, इस सबसे पहली चीज थी जो शैतान ने करवाई, यानी बेहयाई, उसने चोरी नहीं कराई थी उनसे, उसने झूठ नहीं बुलवाया था, उसने कत्ल नहीं करवाया था, उसने शराब नहीं पिलवाई थी, उसने कोई और चीज नहीं कराई थी, कपड़े उतरवा दिए थे, बेहयाई, वो बहुत पसंद है बेहयाई, बेहयाई की बातें, बेहयाई की चीजें, बेहयाई की फिल्में, बेहयाई की मजलिसें, बेहयाई के लिबास, इसको बहुत पसंद है, वो नंगा करना चाहता है आपको, हम अंधे धुंध भागे चले जा रहे हैं, और अकलों पे पर्दा पड़ जाना, क्या होता है कि जिस जिनके कुरान में ये बातें लिखी हुई हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो खुतुवात ही शैतान पे भागे जा रहे हैं, और आज उसके हम सब नताइज देख रहे हैं, ये जो जितनी आप खबरें सुनते हैं ना, रोजाना सुन रहे हैं, ये इसी इन्हीं का रिजल्ट है, ये एक दिन में नहीं पहुंची, ये खुतुवात थे, ये स्टेप बाय स्टेप होता गया, और आज फिर आप अपना सर पकड़ रहे हैं ना, उससे ज्यादा पकड़ेंगे कल अगर नहीं ये रोका, तो ये रोकना है। वलाउला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। और अगर अल्लाह का फजल ना होता ना और उसकी रहमत ना होती तो नहीं पाक हो सकता था तुम में से कोई भी कभी भी, यानी जो गुनाह से निजात मिली, जो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, बरी कर दिया इससे, पाक कर दिया इससे, वो भी अल्लाह ताला का फजल है कि तौबा करने के ऊपर अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, हद जारी हो गई और तौबा की तो ये अल्लाह ताला ने उनको पाक साफ कर दिया, अगर ये अल्लाह का फजल ना होता तो ये कभी पाक नहीं हो सकते थे। दूसरी बात, दूसरा मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए वो भी ये समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने ही उनको महफूज रखा है, वरना इंसान खुद नहीं पाक हो सतर वाला, किन अल्लाह यज़क्की मैं यशा, अल्लाह जिसको चाहे पाक करे, खुद नहीं इंसान हो सकता, ये तो अल्लाह ताला का फजल था उसके ऊपर। अगर आप में से कोई अपने घरों के अंदर, अपने पहनने ओढ़ने के अंदर कोई अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी कर रहे हैं और शैतान के रास्ते से अपने आप को बचा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत नेक समझने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का फजल है उसके इस में। फिर हमेशा अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद रहें, हमेशा शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह तूने मुझे बचा लिया इन चीजों से, क्योंकि कोई खुद नहीं पाक हो सकता, अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है। तो इसमें किसी के ऊपर फखर करने की, तकबर करने की, अपने आप को बड़ी चीज समझने की, बहुत नेक बीबी समझने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है और तू इसी पे कायम रखना, ये डरते रहे हमेशा। वो बहुत सारे लोग हैं सीधे चलते चलते फिसल जाते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है, अल्लाह सुन रहा है देख रहा है, वो जानता है सब चीजों को। इसीलिए उसने, अल्लाह ताला ने ये फरमाया वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ, ये नहीं फरमाया जिना ना करो, इन्नहु काना फाहिशा, वो भी फाहिशा है, वो बेहयाई है। इसीलिए बेहयाई के रास्ते पे भी नहीं जाना, जिना के करना तो दूर की बात है, दूर की बात, वो रास्ता जो उस तरफ जाता है उस पे भी नहीं चलना। और उस रास्ते में क्या चीजें हैं जो चीजें जिना तक लेकर जाती हैं, वो क्या हैं, ये जो सारी हमने बेहयाई की चीजें डिस्कस की हैं, ये सब हैं जिना के रास्ते की, ये सब स्टेप्स हैं जिना की तरफ। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है ला तकरबु जिना, करीब भी नहीं जाना, करना तो बाद की बात है, करीब भी नहीं जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आंख भी जिना करती, कान भी नहीं जिना करता, जुबान भी जिना करती, हाथ पैर जिना करते, शर्मगाह तो सिर्फ उसको वेरीफाई करती कि इसने ये सारे काम किए, या उसको रिजेक्ट कर देती, तस्दीक करती या तकजीब करती। पहले ये सारे काम होते हैं ना, तो फिर शर्मगाह तक बात पहुंचती है। नजरें जब आवारा होती हैं, कानों से सुना है ऐसी चीजों को जाता है, जब जुबान ऐसी बातें बोलती है, तभी जाके ये काम होते हैं। तो मुनकर वो है जिसको अल्लाह रसूल ने मना किया है, वो बुराई है। जिसको बुरा अगर माशरा नहीं भी बुरा समझता, जिसको अल्लाह रसूल ने मना किया है, वो सारी बुराइयां मुनकर है। इन मुनकरात से बचना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अगर बच रहे हैं। वला या तलिल, अच्छा आगे जो आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 20 तक तो आयात उतरी थी, उसके बाद जो आयतें उतरी ये 6 आयतें, तो असल में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी जिसके बाद फिर ये वाली आयतें उतरी थी कि जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात उतर गईं, तो उसके बाद फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के बाद मैं कभी भी मिस्ताह की कसम खा के फरमाया कि कभी भी मैं मिस्ताह की मदद नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो उनकी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने के अंदर पेश पेश थे। अब उसके ऊपर ये आयात नाजिल हुई कि आप वला यतली उलुल फदली मिनकुम वसाती, और ना कसम खाएं तुम में से जो साहिबे फजल हैं और जो वसत वाले हैं, जिनको पर अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ, यानी बड़े मर्तबे वाले और उनको अल्लाह ने रिस्क भी दिया हुआ, वसत भी दी है, किस चीज की ना कसम खाएं, अन यूतू उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजरीन फी सबीलिल्लाह, कि वो खर्च करें, कि वो अल्लाह के रास्ते में दें उन लोगों को जो रिश्तेदार हैं, जो मिस्कीन हैं और जो मुहाजिर हैं, इसके ऊपर कसम ना खाएं कि हम नहीं अब कभी देंगे, कि नहीं देंगे हम, अन यूतू के नहीं देंगे वो इन लोगों को, वल याफू वल यस्फाहू, और चाहिए कि माफ कर दें और चाहिए कि सफा पलट दें, यानी सफ से है ना सफा, जैसे हम ये कहते हैं ना सफा, ये एक पेज पलट देना, यानी कि दरगुजर कर देना, इग्नोर कर दें, बस इस चीज को खत्म कर दें, बुला दें इसको। अला तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। इतनी बड़ी बात है, देखिए ये कितने हौसले की बात है, खुद इमेजिन करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, किसी की बेटी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे और वो भी इतना मासूम बच्ची के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम, बेहयाई का इल्जाम कोई लगा दे, तो खुद सोचे माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। कभी नहीं दिल करता कि इसको माफ करें। और खास तौर पे ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप एहसान कर रहे हो, उस वो बंदा उठ के ऐसा इल्जाम लगाए तो फिर सोचे, फिर तो और ज्यादा अफसोस होता है, और इंसान कहता है आइंदा मैंने नहीं कभी करना। और ये देखे ना, रिश्तेदारों में से भी ऐसे लोग होते हैं बाज दफा, जो ऐसी बातें कर देते हैं कि इंसान का दिल खराब हो जाता है, और वो कहता है मैं तो आइंदा अपने इस रिश्तेदार की कभी भी मदद नहीं करती। जरूरी नहीं कि ऐसा इल्जाम लगाने वाली बात हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके बारे में कर देते हैं, जी पता चलता है जी फलाने ने आपके बारे में ये बात वहां फलां जगह पे की है, और आप उसी बंदे को सदका खैरात देते हैं, जकात देते हैं, और अब आपका दिल नहीं करता कि कभी भी इसको दे, तो आप कहते हैं मैंने नहीं दिया करनी इसको। इस तरह मिस्कीन भी बाज दफा ऐसे मसलन है, कोई नौकर है आपके, मिस्कीन है, आपने उसकी मदद की या किसी और मिस्कीन की मदद की, तो वो भी आपके खिलाफ या तो आपका काम ही नहीं करते, या इस तरह आपके खिलाफ और बातें करना शुरू कर देते हैं। या मुहाजिर हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, आज तो वो नहीं है वैसे मुहाजिर, जिन्होंने फी सबीलिल्लाह अपना घर बार छोड़ा हुआ है, उस जमाने में थे, और ये भी उनमें से ही थे, एक मिस्ताबी मुहाजरीन में से थे, रिश्तेदार भी थे, मिस्कीन भी थे। तो इनको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इनको मंथली दिया करते थे कि इनका घर बार खर्चा चल जाए। तो वो रिश्तेदार मिस्कीन मुहाजिर हैं, और आपको पता है हिजरत का भी अजर है, रिश्तेदारी के साथ रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का भी अजर है, मिस्कीनों को देने का भी अजर है। तो अब उन्होंने कसम खा ली कि नहीं, ये अब ऐसा इन्होंने किया, अब से मैंने नहीं इनको देना कुछ भी। और ये आयत उतरी, अल्लाह ताला ने फरमाया आप दरगुजर कर दीजिए। इतनी बड़ी बात है दरगुजर करना, ऐसी बात को लोग कहते हैं ना कि हमसे माफ नहीं किया जाता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती जो यहाँ पे बताई गई। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आप माफ कर दें। और क्या सोच के माफ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये आयत सुन के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो ही ये बात सुनी, फरमाया बेसाख्ता क्यों नहीं अल्लाह, बेशक मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बख्श। जब आप भी किसी को माफ करने लगे ना, तो यही सोचे अल्लाह तो हिबुना यगफिर अल्लाह लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला। तो अगर तुम अपने लिए माफी चाहते हो तो दूसरों को माफ करना सीख लो, लेकिन जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं ना वो ही देना शुरू करते हैं। आप अपने लिए इज्जत चाहते हैं ना, दूसरों को इज्जत देना शुरू करते हैं। आप अपने लिए चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपका रिस्क कुशादा करे, तो आप लोगों को पैसे देना शुरू करते हैं। आप कोई कोई भी अपने लिए चीज चाहते हैं ना, आप लोगों में वो बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला वो आपको दे दे। आप माफी चाहते हैं ना, आप लोगों को माफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि जब सुबह करें ना, तो दोनों जेबों में माफी को भर लें, एक जेब में वो माफी हो जो आपने लोगों को देनी है, और दूसरे में वो माफी हो जो दूसरों से आपने मांगनी है ना। एक है, यानी जब जहां पे भी आप सारा दिन घूमेंगे, आपके साथ अगर कोई गलती करता है, कोई ज्यादती कर जाता है, उसको फौरन माफ कर दें, एक जेब में वो है ना, और दूसरे आपने अगर गलती कर दी, किसी के साथ आपने ज्यादती कर दी, कुछ आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, फौरन माफी मांग लें, और दूसरी जेब में ये माफी थी, फौरन माफी मांग लें, फौरन सॉरी कर लें। शाम तक आपके जिम्मे किसी का भी देन नहीं होगा, सब आपने दे दिया होगा। माफी मांगनी थी जहां पे वो भी मांग ली, आपका खाता क्लियर हो गया, और जहां पे आपने किसी को माफ करना था वो भी कर लिया। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फौरन कसम तोड़ दी थी, कसम खाई थी ना, तो हदीस में आता है जिसने कसम उठाई हो फिर वो देखे कि उस चीज से बेहतर और कोई चीज है ना, तो उसे चाहिए कि अपनी कसम का कफारा दे दे और वो काम कर ले। मसलन आपने कसम खा ली, मैंने फलाने से कभी बात नहीं करनी, कसम खाती हूँ मैंने नहीं कभी उसे बात करनी, लेकिन बात करने में बेहतरी आप देखते हैं ना, अपनी कसम का कफारा दे दे और उसे बात करना शुरू कर दे। आदमी ने कसम खा ली कि मैं तो तुम्हें अब रखूंगा ही नहीं, बस मैंने तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, मेरे तुम्हारे से ताल्लुक ही नहीं, कसम का कफारा दे दें और फिर बात करना शुरू कर दें। और हम समझते हैं ना कसम का कफारा 3 रोजे बस रख लें तो कसम का कफारा हो गया, नहीं, कसम का कफारा ये नहीं है 3 रोजे रख लेना, बल्कि पहले गुलाम आजाद कराना, फिर अगर वो नहीं कर सकते जैसे आजकल नहीं है तो 10 मिसकीनों को खाना खिलाना, फिर वो नहीं कर सकते तो 10 मिसकीनों को कपड़े पहनाना, फिर अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो फिर है 3 रोजे रखना। हम सीधे 3 रोजों पे चले जाते हैं, गुलाम तो आजकल नहीं है, तो फिर हम, हाँ ये उसका उलमा कहते हैं कि अगर कोई कैदी है कत्ल के जुर्म के अंदर वो फंसा हुआ है, और आप उसके मकतूल के वरसा को दियत के ऊपर आमादा करा के और दियत अदा कर दें और ये आजाद हो गया, तो ये भी गर्दन आजाद करना है। तो देखें आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फौरन बात मान ली, ये नहीं कि हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरा तो नहीं होता, अब मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, अब मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं करता मेरे, नहीं ये सहाबा का तरीका नहीं था, वो समेना वाताना करने वाले थे। और देखेंगे कि रिश्तेदार अगर ऐसा करे ना, और जिस पे आपने एहसान किया हुआ, हमारे भी जरूर हम सबके साथ ऐसा होता है, रिश्तेदारों में से जरूर कोई उठ के कोई कोई ना कोई रिश्तेदार हर फैमिली में होता है जो कि तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, फिर उसके साथ जरूरी नहीं कि आप सदका खैरात कर रहे हैं, फिर उसके साथ बात करने का भी दिल नहीं करता, तब भी वल याफू वल यस्फाहू, यहाँ पे तो देना भी था, तब भी ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप भी छोड़ दें, अब उसको जाने दें, अब उसको कोई मदद करने की जरूरत नहीं जो ऐसा करे, नहीं फरमाया आप आला किरदार के मालिक बनिए, आप ऊपर होंगे जब आप माफ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे, जाने देंगे, छोड़ देंगे, सफाई पलटती आप पीछे चली गई वो बात, यानी कि बार बार उसी बात को लेकर आते जाएं, टर्न द पेज, बार बार उसी का जिक्र करते रहे, नहीं मुझे नहीं भूलता उसने ऐसे किया था, मुझे नहीं भूलता, अगर आपसे नहीं भूलता ना तो इसका मतलब इतना आला वो आला पेडिस्टल पे तो नहीं जा सकते, फिर बदला ले लें, जितना उसने आपके साथ किया उतना बदला ले लें, फिर इस वाले मकाम पे तो नहीं पहुंच सकते, जाहिर है ये तो बहुत ऊंचा मकाम है, बदला लेने की अल्लाह ताला ने इजाजत दिया, मगर इक्वल होना चाहिए, अब बदला ले लिया ना तो अब तो ठंडे पड़ जाए, हम बदला लेके भी ठंडे कहाँ पड़ते हैं, उसके बाद फिर वही बातें, फिर वही बातें, फिर बदला ले लो, फिर जितना उसने आपको कहा, उसने अगर आपको एक बात कही है आप भी वो उतनी ही बात उसको कह दें, उसने आपको कहा तुम जालिम हो, तुम फलां हो, आप कह दें तो, नहीं तुम हो ये, चलो इतना हो गया ना, अब खत्म हो गई बात, आपने बस कह दिया ना कि तुम हो, तो वो बस बात खत्म हो गई, अब नहीं आप अपने दिल के अंदर रख सकते कि नहीं 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 अभी मैंने और कहना है, और अभी तो मैंने माफ नहीं किया, अब माफ माफी माफी वाली बात तो तब थी ना कि अगर आप बदला ना लेते, जब आपने बदला ले लिया ना तो अब माफी वाली चीज खत्म हो गई है, अब किस बात पे आपने माफ करना है, अब तो आपने बदला ले लिया, उस वक्त तो ठंडे हो जाए, उस वक्त भी नहीं होते ठंडे, अब जब तक के ऑन गोइंग बदला ना लेते रहे, अब जब आप ऑन गोइंग बदला लेते हैं तो फिर आप जालिम बन जाते हैं, बात समझ आ गई ना, कि अगर ये वाला आप किरदार नहीं अपना सकते ना तो बजाय घुट घुट के और घुलने के और फिर उसके बाद गीबत इधर और उधर और चुगलियां और फलां और ये करने के, आप उसी वक्त उतना ही बदला लेके बात को खत्म कर दीजिए, अगर आप इतना आला इखलाक नहीं दे सकते तो वो वाला है, बराबर का आपने कर दिया, लेकिन जिस वक्त आप और बदले में बढ़ जाएंगे तो उल्टा आप जालिम बन जाएंगे, ठीक है। इन अल्लदीना यरमूना, बेशक वो लोग जो यरमूना मतलब है कि इल्जाम लगाते हैं, मोहसिनात पे, गाफिलात पे, मोमिनात पे, ऐसी जो पाक दामन औरतें हैं जो बेखबर है, उनको बेचारियों को पता भी नहीं है कि उनके ऊपर इल्जाम बेहयाई के लगा रहे हैं, कोई चर्चे कर रहे हैं इसके, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो पता भी नहीं था, तो लो इनू फिर दुनिया वाल आखरा और हम अजाब नाजीन, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है वो लानत कर दिए गए हैं जो ऐसे इल्जाम लगाते हैं, दुनिया में भी उनके लिए लानत है और आखरत में। आयशा रज़ी अल्लाह तआला के कॉन्टेक्स्ट में उस वाक़े के तो ये बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन रहती दुनिया तक ये एक कानून आ गया कि जो भी पाक दामन भोली भाली मोमिन औरत के ऊपर इल्जाम लगाएंगे ऐसे, हमें क्या पता उसके घर मैंने फलाने को जाते देखा, हमें क्या पता क्या करती है, हमें क्या पता, ये खास तौर पे जिनके पास सर पे हस्बैंड नहीं होता उनके ऊपर तो इल्जाम लगाने का तो बिल्कुल ही आसान समझते हैं, उनके अब उसके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं है ना, वो अब जो एक कुंवारी है चाहे बेवा है चाहे मुतलका है, आप देखें ऐसी बेचारी औरतों की जिंदगियां कितनी मुश्किल हो जाती, लोग छोड़ते ही नहीं, अब जो ऐसे इल्जाम लगाएगा ना उसकी कितनी बड़ी सजा है, लानत हो गई तो अल्लाह की रहमत से दूरी होगी, और दुनिया में भी लानत जताएं, सोचें जरा, दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से दूरी और आखरत में भी, और उनके लिए बड़ा अजाब है, अल्लाह माफ करे, तो इस चीज से तौबा कर लेनी चाहिए अगर कभी ऐसी काम किया भी है, ताकि लानत से निकलना, अल्लाह ताला माफ करे। तो आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को तो नहीं सजा मिली थी और ना उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन जो मुखलिस तीन मुसलमान थे उन्होंने उनके ऊपर हद जारी हो गई थी, उन्होंने तौबा कर ली थी और वो सच्चे मुखलिस थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उनकी बल्कि तारीफ भी फरमाई, तो इसलिए जिसको सजा दे दी गई हद जारी हो गई यहाँ पे और उसने तौबा कर ली, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तो ये उनके लिए ऐसी सजा है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अईदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। सोचो वो दिन, अल्लाह ताला ने उस दिन से डराया है कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए, जिस दिन उनकी फिर जो ये इल्जाम लगाने वाले हैं ना, उनकी फिर जुबानें उनके खिलाफ ही गवाहियां देंगी, और उनके हाथ गवाही देंगे और उनके पैर गवाही देंगे। अंदाजा कीजिए कि ऐसे लोगों को वहां पर कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उनकी अपने ही आजा, मिसाल के तौर पे किसी की अपनी बेटी उसकी अपनी माँ के खिलाफ जाके लोगों में बातें करना शुरू हो जाए और लोगों को बताए कि मेरी माँ तो ऐसी है और ऐसी है। अब वो माँ कैसा है, उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि मेरी अपनी बेटी मेरे लिए ये बातें कर रही है। अंदाजा करें इंसान का ये जिस्म जिसको वो अपना समझता है ना, कहते तो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म कहाँ मेरा जिस्म है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो अल्लाह की एक अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है, थोड़ी देर के लिए हमें मिला है फिर वो वापस ले लेगा। तो ये इनको समझ ही नहीं आती, इसीलिए कहते ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये तो उस दिन खुद हमारे खिलाफ गवाहियां देगा, सूरह यासीन में भी है ना कि अल्लाह ताला उस दिन मुंहों पे मोहरें लगा देगा और इनके हाथ बोलेंगे और इनके पैर इनके खिलाफ गवाहियां देंगे जो ये करते रहे। क्योंकि बंदा हदीस में आता है, बंदा कहेगा अल्लाह ताला मैंने किसी की गवाही नहीं कबूल करनी, मैं बस अपनी गवाही के लिए खुद ही काफी हूँ, मैं खुद ही अपनी गवाही दूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक है तुम फिर तो गवाही दो अपनी, और साथ ही उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी और उसके हाथ और पैर बोलेंगे, हत्ता कि उसकी जिल्द भी बोलेगी, और फिर इंसान हैरान हो जाएगा, बुरा भला कहेगा अपने जिस्म को कि ये मेरे जिस्म ने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दी, तुम्हारे बचाने के लिए ही तो मैं ये कह रहा था। ये देखेंगे यही जिस्म जिसको आज हम संवार के खूबसूरत करके फिर हम सोचते हैं कि इसको बनाओ, आधी तो ज्यादा हमारी एफर्ट इसी जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए होती है ना, इसको नेमते मिल जाए, इसके ऊपर ये हो जाए, इसके ऊपर हार सिंगार कर लूं, इसको खूबसूरत कर लूं, यही जिस्म बोलने शुरू हो जाएगा। इसको ब्यूटीफाई करने में हमारा आधा टाइम लगता है ना, या इसको आराम पहुंचाने में लगता है, तो खुद सोचें, भूल जाते हैं हम कि ये हमारे खिलाफ बोलने लगे तो क्या होगा। फिर उस दिन इंसान इसी को बुरा भला कहेगा, भाई तेरी खातिर ही तो मैंने सारा किया था, तेरी खातिर किया था तो तू मेरे खिलाफ ही बोलने लगा। अस्तग़फिरुल्लाह, यौमइज़िन युवफ्फीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक, उस दिन अल्लाह ताला बदला देगा पूरा पूरा बदला हक के साथ। हक के साथ मतलब यानी एक हक का माना है कि साबित शुदा, सबूत के साथ, सबूत के साथ मतलब है यानी उसके सबूत भी पेश होंगे, सबूत भी साथ होंगे, यानी इंसान को सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि ये तुम्हारी सजा है, बल्कि उसकी सारी फिल्म भी उसको दिखाई जाएगी, ये देखो सबूत, ये तुम्हारे काम कर रहे थे ना इसका ये बता, ये तुम्हारा तुमने काम किया, इसलिए इंसान बोल नहीं ना सकेगा। जैसे आज आप देखें, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो साथ ही वो उसकी तस्वीर भी भेज देते हैं, जी फलां तारीख को फलां टाइम पे आपने ये इशारा तोड़ा था और ये उसकी तस्वीर है। अब इंसान क्या बोल सकता है, फिर तो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो अगर इंसानों का बनाया हुआ निजाम ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला के पास वो सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसको दिखाया भी जाएगा ये देखो हक के साथ होगा फैसला। और दूसरा मतलब ये हक के साथ फैसला होने का कि बिल्कुल अदल के साथ इंसाफ होगा उसके साथ। और दीन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, बदला। और यालमुना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और इंसान को पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला हक हक है, वाजे करने वाला है, अल्लाह ताला भी हक है और जो वो करता है वो भी हक है, जो वो कहता है वो भी हक है, सच है, और मुबीन कर देता है, बिल्कुल वाजे कर देता है चीजों को। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। यहां पर ये आयात का जो उतरी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाने के ऊपर, यहाँ पे उनका एहतमाम होता है, इख्तिताम होता है, और ये बता के कि जो नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। यानी इससे भी पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई नापाक औरत मिल सकती थी, आप जब खुद पाकबाज हैं। और फिर ये भी मतलब है ना कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लायक है और नापाक मर्द नापाक औरतों के लायक है, वो पाक के लायक नहीं है। और तैयबात लितयबी ना, वो तैयबू ना लितयबात, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में कहीं देखते हैं कि बाज बेचारी ऐसी पाक बाज औरतें होती हैं उनकी ऐसे मर्दों के साथ शादियां हो जाती हैं जो जानी है ये। इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि यानी वो उनको ना पसंद करते ना उनके लायक है, ये उनके लायक नहीं है। और ये भी हमें यहाँ पे दूसरा उलमा ने एक और इसका माना किया, उन्होंने कहा कि खबीसात और ये तय्यिबात, ये बात के माने में है, यानी औरतों के माने में नहीं है, बात के माने में है। यानी खबीस बातें जो है ना वो खबीस लोगों के लिए ही है, और वो खबीस लोग खबीस बातों के लिए, यानी जो ऐसी गुफ्तगू जो ऐसी गंदी बातें हैं ये खबीसों को ही सूट करती हैं, बेहयाई की बातें और इसको बेहयाई को फैलाने की बातें हैं, ये जो है ना ये गंदे लोगों को सूट करती हैं, पाक लोगों को नहीं, पाक लोगों को पाक बातें सूट करती हैं। आप गंदगी चाहते हैं अपने लिए, कपड़े पे गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए तो इंसान कराहत करता है, और गंदी बातें क्या इंसान को गंदा नहीं करती? वो गंदगी नहीं है जिसको हम जुबान पे लाते हैं, क्या हमारी जुबानों से गंदी नहीं होती? खुद बताइए, हमारे दिल गंदे नहीं होते क्या? एक बर्तन में आप गंदगी डाल दें तो क्या वो बर्तन गंदा नहीं होगा? दिल भी एक बर्तन है, जुबान भी एक समझ चीज है, जिसके ऊपर गंदी बात आई तो क्या जुबान गंदी नहीं होती? उसका एहसास ही नहीं है, वो हमें गंदा करती हैं ये गंदी बातें। तो लिहाजा इनको जुबान पे ही नहीं लाना, इनको दिल में ही नहीं लाना, ताकि हमारे दिल साफ रहें, पाक रहें, क्योंकि ये हमें सूट, अगर हम पाक है ना तो ये हमें सूट नहीं करती, और अगर नापाक हैं तो फिर तो जाहिर है यही बातें, ये इन्हीं के चर्चे होंगे। उलाए का मुबर्राउन मिम्मा यकूलून, ये लोग पाक हैं इससे जो वो कहते हैं। कौन लोग? यानी ये जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सफवान बिन मुअत्तल, ये पाक हैं इन बातों से जो वो लोग कहते हैं जिन्होंने बनाई है। लहु मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए तो बख्शिश है और रिज़्क़ करीम है। और वाकई देखें आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे फजीलत दी है, इम्तियाज दिया है, दूसरों के ऊपर दूसरी अजवाज के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे इम्तियाज दिया है कुछ चीजों में, और वो क्या है? पहली चीज इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह, कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले मेरी, मुझे जिब्राइल अमीन एक रेशमी कपड़े में मेरी तस्वीर लेकर आए थे और आपसे सलम के पास लाके दिखाई थी और फरमाया था ये तुम्हारी जौजा है। तो जैसे हजरत जैनब का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों में कर दिया ना, लेकिन इनके लिए जिब्राइल अलैहि सलाम एक रेशमी कपड़े में इनको लेकर, तस्वीर इनकी लेकर आए थे। दूसरी बात यह है कि आप सल्लम ने इनके सिवा किसी कुमारी से नहीं शादी की, सारी जितनी भी थी ना वो बेवाएं या तलाक याफ्ता थी। तीसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इनकी गोद में हुई। चौथी ये कि आप आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही आपको दफन किया गया। पांचवी ये कि आप पर उस वक्त भी वही नाजिल हुई थी जब आप आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक लिहाफ में होते थे, दूसरी किसी बीवी के साथ ये नहीं था। बाकी बीवियों के साथ ये होता था कि जब वही नाजिल होने लगती थी तो उनको हुक्म होता था वो बिस्तर से अलग हो जाती थी, ये साथ होती थी तो इनके बिस्तर पे यानी आपसे सलम पे वही नाजिल होती थी। और फिर छठी बात ये कि आसमान से इनकी बरात नाजिल हुई। सातवीं ये बात कि ये खलीफा रसूल की भी बेटी और सिद्दीका और उनमें से हैं जिनको दुनिया में मग़फ़िरत का और रिज़्क़े करीम का अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया इस आयत में, ये जो हमने अभी पढ़ी है। यहाँ पे है ना उनके लिए मग़फ़िरत भी है और रिज़्क़े करीम भी है, अच्छा रिज़्क़ है उनके लिए, जो जन्नत का रिज्क ही रिज्क करीम है, तो जन्नत की बशारत उनको यहाँ पे मिल गई। और इसके अलावा भी आपको पता है इनके बहुत सारे फजाइल हैं, जैसे ये फकाहत में और इल्म में इतनी थी कि इनसे ज्यादा फसीह और बलीग कोई नहीं था बात करने में। सहाबा इनसे आके मसाइल पूछा करते थे, कई मसाइल इन्होंने आके बताए, कई अहादीस इन्होंने, यानी औरतों के अंदर सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करने वाली हैं ये, इतनी ये बड़ी बात है ना। फिर इनके फजाइल और भी बहुत सारे फजाइल हैं इनके, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि मैंने जिब्राईल अलैहि सलाम को अपने इस हुजरे में खड़े हुए देखा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहि सलाम को अपने हुजरे में खड़े हुए देखा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सरगोशी कर रहे थे। तो जब आप हुजरे में दाखिल हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कौन थे? तो आपने पूछा तुमने इन जैसा किसी को देखा? तो मैंने कहा दहिया कल्बी को, यानी इंसानी सूरत में थे ना वो जिब्राईल अलैहि सलाम। तो कहती मैंने कहा कि दहिया कल्बी को, तो आपने फरमाया तुमने खैर कसीर को देखा, ये जिब्राईल अलैहि सलाम थे, वो बहुत थोड़ी देर के लिए ठहरे थे, हत्ता कि आपने फरमाया ये जिब्राईल हैं तुमको सलाम कह रहे हैं। तो मैंने कहा वालेह सलाम, यानी इनके ऊपर जिब्राईल अलैहि सलाम ने सलाम भेजा था। और फिर आपसे सलम ने फरमाया था कि मर्दों में तो बहुत सारे कामिल हुए हैं, लेकिन औरतों में सिर्फ मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जैसे सुरीद की फजीलत तमाम खानों पे। तो सुरीद क्या होता था? गोश्त के बना हुआ सालन होता था जिसमें रोटी के टुकड़े डुबो दिए जाते थे, तो उसको कहते थे वो, बहुत अरब में बहुत यानी खानों का सरदार समझा जाता था। और इसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बीमार हुई तो इब्ने अब्बास ने उनसे कहा था कि आप तो उनके पास जा रही हैं जो बहुत सच्चे हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास। और ये भी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, तो आपने फरमाया था आयशा, और फिर पूछा गया ना मर्दों में, फरमाया आयशा के वालिद। और आप सल्लम ने फरमाया था कि मुसलसल 3 रात ख्वाब में तुम मुझे दिखाई गई, तो मेरे पास एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में तुम्हारी तस्वीर लेके आया था, और वो कहता था ये आपकी बीवी है, तो मैंने खोला तो वो देखा कि तुम थी। तो अल्लाह ताला ने इनको चूज किया था। आज लोग इनके ऊपर बातें बनाते हैं, अल्लाह ताला ने इनको एज वाइफ आप सल्लम के दिखाया था इनको ख्वाब में। अब इसके बाद भी एतराज करना उन्होंने छोटी से क्यों कर ली, उनकी उम्र क्या थी, क्यों हमें इस चीज ऐसी बातें करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हम इन चीजों के पीछे हैं कि उन्होंने किस उम्र में की थी? बस जिस उम्र में भी की थी, जब आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा राजी हैं और आपसे सलम राजी हैं और अल्लाह तआला ने उनको दिखाया, तो हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? वैसे हम फिल्मों में देख लें कि किसी को कोई हीरोइन है, उसके माँ बाप उसको मना कर रहे हैं किसी हीरो से शादी करने पे, तो हम बड़े तड़पते हैं, वो उनको विलन बना देते हैं। भाई यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं एडवोकेट बन के जो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से छोटी उम्र में शादी करती, क्यों वो नहीं चाह, वो क्यों रोती थी, क्यों रो रही थी जिस वक्त ये उनके ऊपर इल्जाम लगा? वो फिर आपसे सलम ने जब ईला हुआ था और आपसे सलम ने बीवियों को ये चॉइस दी थी कि जो जो कोई अलग होना चाहिए अलग हो जाए, अगर इनकी जबरदस्ती की कोई शादी हुई होती तो अलग हो जाती उस वक्त। वो तो इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली थी और इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करने वाली थी, वो इस चीज पे फख्र कर रही हैं। ये वफात से पहले आपसे सलम कहती है मेरे सीने पे टेक लगाए हुए थे, ये मेरे घर में वो दफन हुए, कितनी उनके लिए बड़े ऑनर की बात थी। और आज हम इस चीज के एतराज और इस चीज के ऊपर बुराइयां करते हैं और इसको करते हैं, बल्कि आपसे सलम ने फरमाया कि मुझे पता चल जाता है आयशा कि जब तुम मुझसे राजी होती है और जब तुम मुझसे नाराज होती। तो कहती है आपको कैसे पता चल जाता है? तो आपने फरमाया जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। तो कहती है हाँ ये तो बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ और तो नहीं कुछ ऐसे कहती। तो आप देखें कि तो कितनी मोहब्बत से रहने वाले जोड़े थे, लेकिन हमें आज बहुत प्रॉब्लम है इस चीज पे कि एज क्या थी। तयम्मुम की आयात इनकी वजह से नाजिल हुई, जब इनका हार गुम हो गया था और पानी को नहीं था, तो सबने फिर कहा कि लोगों ने भी कहा कि आप लोगों के घराने की वजह से, आपके घराने कैसे हमें कितनी बरकत मिली है, कितनी ये निजात का रास्ता अल्लाह ताला ने निकाला है। तो अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ कि ये जो वाकया मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये जो पूरी हदीस आपके सामने रखी लंबी हदीस है, इसमें कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आप नोट भी कर लें कि जिससे हमें भी रहनुमाई मिलती है कि आगे की जिंदगी के लिए कितनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं। एक तो पहली बात ये कि सफर में जाने के लिए कुरानदाजी करना, ये भी हमने इससे सीखा इस वाक्य से, लेकिन सिर्फ कुरानदाजी सफर में जाने के लिए नहीं, बल्कि आप वैसे भी कुरानदाजी कर सकते हैं जब आपके सामने दो इक्वल चीजें हों। मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल इक्वल एक जैसी चीजों, अब आप सोचे कि ये लूं कि ये लूं, तो आप उसके लिए कुरानदाजी करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह खवातीन गजवात में शरीक होती हैं, होती थी, जाती थी साथ, ये भी हमें पता चला। फिर औरत के ऊंट पे सवार होना और कजावे में बैठने का भी हमें पता चलता है कि ऐसा भी करने में कोई हर्ज नहीं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि सफर में मर्द खवातीन का ख्याल करें, जैसे वो हौदा जो उठा के ऊपर रखते थे, इस तरह करते थे, तो वो भी। फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई औरत कजाए हाजत के लिए शोहर की इजाजत के बगैर जंगल में चली गई है, तो इसका भी हमें जवाब मिलता है। हमें यह भी पता चलता है कि खवातीन के लिए सफर में हार पहनना वो भी जायज है। फिर गैर महरम औरत का कजावे में बैठने का भी जवाज है, और ये कि गैर महरम सफर में औरत के साथ बिला जरूरत बात ना करें, ये भी हमें पता चलता है। हमें ये बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि जब हजरत सफवान आए थे, तो उन्होंने जैसे आज हमारे लिए तो बड़ा ही ये बात है ना, भाभी आप कैसी हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा आपने कुछ खाया पिया कि नहीं किया, आपने रेस्ट कर लिया, आपने ये कर लिया। औरत भी पूछ रही है जी आपने खाना खाया, आपने सही किया, ये हमारी जरूरत नहीं है। आयशा रजी अल्लाह तआला और सफवान रजी अल्लाह तआला जिनसे ज्यादा पाक कोई नहीं हो सकता, और अल्लाह तआला ने उनकी बरात की बात कुरान में कर दी। लेकिन आप देखते हैं वो आके पूछना पूछते ना कि भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ओहो आप कैसे यहाँ पे रह गई, क्या हो गया आपके साथ, अच्छा चले आपको कुछ चाहिए, पानी तो नहीं चाहिए, आपको ये तो नहीं चाहिए, मैं आपको ये देता हूँ, मैं आपको वो करता हूँ, कुछ भी नहीं। वो कहती हैं खुदा की कसम सिवा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी इस आवाज से मेरी आंख खुली। और वो बिठा लिया उन्होंने ऊंट, मुंह उन्होंने दूसरी तरफ कर लिया, ये हदीस में आता है, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, उस ऊंट के बाजू के ऊपर अपना पैर रख लिया, और आयशा रजी अल्लाह तआला उस पे सवार हो गई और वो लेकर चले, और सारा रास्ता में कोई बात नहीं। लेकिन हम इसको अपना फर्ज ऐन समझते हैं कि जहां पे हमने होस्ट करना है किसी को, तो फिर हम मर्दों से भी बाकायदा पूछें और उनसे भी बातचीत रखें, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखें कि औरतों के लिए कम खाना बेहतर है, इसलिए कि देखें वो बताती हैं कि हम उस वक्त कम खाती थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि बाज लोग अगर पीछे रह जाएं किसी ग्रुप में, ताकि वो पीछे से आने आए और चीजें वगैरह समेट लें, तो इसमें इसका भी जवाब मिलता है। फिर हम देखते हैं कि कोई कोई भी अगर मुश्किल में है, तो उसकी मदद करना, जैसे अब ये पीछे काफले से रह गई थी, तो उन्होंने आके उनकी मदद की। फिर हमने देखा है कि खवातीन के साथ उसने अदब के साथ पेश आना, जबकि खास तौर पे तन्हाई भी है, अब तन्हाई थी ना यहाँ पे, तो तन्हाई है, लेकिन फिर भी अजब सफवान ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि जो काम था बस किया। और फिर ईसार का भी बयान पता चलता है, अजब सफवान खुद भी नहीं ऊंट पे बैठ गए, वो ऊंट दो आदमियों को तो उठा ही लेता है ना, तो वो खुद पैदल चल रहे हैं, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सवार किया था, हालांकि ये लोग पाक लोग थे। फिर हमें यह पता चलता है कि चाहे दीन की चाहे दुनिया की किसी भी मुसीबत के वक्त हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ा। हम ये भी देखते हैं कि अजनबी आदमी हो चाहे वो नेक ही आदमी हो, उससे भी चेहरे का पर्दा है, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत सफ़ान को देख के अपनी चादर से चेहरा छुपा लिया था। हम ये भी देखते हैं किसी शख्स ने किसी पे तोहमत लगाई हो, तो उसका उस शख्स से जिक्र ना करना वो भी ठीक है। जैसे 1 महीने तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को तोहमत का पता ही नहीं चला था, तो कोई आके नहीं बता रही थी हाँ सुना है तुम्हारे ऊपर तोहमत लग गई, ऐसा कोई भी नहीं किसी ने किया। ये भी एक बहुत ही इखलाक से गिरी हुई हरकत होती है कि अगर किसी के बारे में कोई बात कर रहा है, तो उसको जाके देखें आपके बारे में ना फलां ये कह रहे हैं, ये उसको तकलीफ पहुंचाना है ना। अगर कोई कह रहे हैं तो आप अगर इतने ही हमदर्द हैं, तो आप खुद क्यों नहीं उसको जवाब दे देते, उसको उसकी गंदगी उठा के लाके तो इसको पहुंचाने वाले बन गए, ये फलां आपके बारे में ये बात कर रहा था, तो आपके सामने अगर बात की थी तो आपको जवाब देना चाहिए ना। तो ये लोगों की आदत होती है, वो सुन लेते हैं वहां से, फिर उसके बाद आके तो कैरी करके इसको बताते हैं, और ये नहीं करते कि वहां पे खुद बता दें, लेकिन बहुत हमदर्द बनते हैं कि देखें हम वो बात गंदगी उठा के आप तक लेकर आए, तो इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी से मोहब्बत है या किसी की खैर ख्वाही, तो वहीं पे दूसरे को जवाब दे दें। अच्छा, फिर ये भी है कि खामन का बीबी के साथ भी अच्छा सलूक करना, और मरीज का हाल पूछते रहना, ये भी हमें पता चलता है। और अगर औरत कजाए हाजत के लेकर जा रही है, तो अपने साथ किसी औरत को लेकर जा सकती है, ये भी हमें पता चला। अगर किसी का कोई अजीज या रिश्तेदार किसी मुआज़्ज़ज़ शख्स को अजियत दे, तो उसको बुरा जानना, जिस तरह के उम्मे मिस्ताह ने किया, हालांकि बेटा था। अब देख लें कि लोग अपने बच्चों के ऊपर चाहे वो कितना भी कुछ बुरा कर ले, उसके ऊपर या तो पर्दे डालते रहेंगे या फिर उसके उजर पेश करते रहेंगे, लेकिन उम्मे मिस्ता ने ये नहीं कि अगर मेरा बेटा है तो चलो कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसे कर भी दिया, नहीं, उसने अपने बेटे को भी उन्होंने बुरा कहा कि उसने ऐसी हरकत क्यों की है। ये होता है हक पे होना, इंसाफ वाली बात करना। इंसाफ अक्सर खत्म हो जाता है जिस वक्त हमारी अपनी औलाद की बात आती है। फिर अहले बदर की फजीलत हमें पता चलती है और उनकी तरफ से दिफा करना, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत मिस्ताह की तरफ से दिफा भी फौरन किया ना, जब उनकी वालदा ने कहा कि हलाक हो मिस्ताह, तो उन्होंने कहा तो आप क्यों ऐसे कह रही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें क्या इसकी अम्मी या कह रही है तो कहती रहे, ये नहीं कहा, उन्होंने फौरन दिफा किया। तो जब आप किसी की बुराई सुने और आपको पता है कि वो अच्छा इंसान है, तो फौरन उस बंदे का दिफा करें, ये ना करें कि हमें क्या जो मर्जी कोई कहता रहे उसका। आप दुनिया में दिफा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आखिरत में जहां पे आपको जरूरत होगी आपका दिफा करेगा। और ये भी जैसे अभी बात हुई कि अपने बच्चों की अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो वालदैन है, चाहे वो बहन भाई है, चाहे कुछ है, कितना भी प्यारा रिश्ता है, अगर गलत है तो वो चीज गलत है और उसको मानना चाहिए, ना कि उसको जो है ना जस्टिफाई करने शुरू हो जाए और कहें कि ये गलत है ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यहीं पे तो पता चलता है ना हमारे अंदर कितना इंसाफ है। फिर एक और बात कि अहले बदर की मगफिरत का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है कि अहले बदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया हुआ है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दुनिया में कोई गलत काम करें तो उनको दुनिया में सजा ही नहीं मिले, बल्कि हजरत मिस्ताह ने तोहमत लगाई थी तो उनके ऊपर हद कजब जारी हुई। ठीक है, अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जो जिन्होंने हद कसफ का हुक्म नाजिल होने से पहले इन्होंने तोहमत लगाई थी, इस पर भी हद जारी हुई। अब ये नहीं होगा कि अच्छा वो तो पहले थी ना, अब ये हुक्म तो अब आया तो अब नहीं करना। फिर हम देखते हैं कि औरत अपने मेके जाने के लिए खाविन से इजाजत ले ले, हालांकि वो बीमार हैं, चाहती तो अभी उम्मे मिस्ताह से सुना है तो घर जाने की जरूरत ही क्या थी, सीधी अपने माँ बाप के पास चली जाती, उन पूछने की जरूरत नहीं। हम तो आज कहते हैं ना हमें क्या पूछने की जरूरत है, इसको भी हम अपनी बेइज्जती समझ रहे थे, हस्बैंड से क्या पूछे जाने के लिए, और पर्स पकड़ा तो चलो जी कहीं भी चले गए। तो ये नहीं, इजाजत ले लें, अब देखेंगे इससे आपके आपस के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इसी तरह जब कोई ताज्जुब की बात हो ना, हैरानगी की बात हो, सुभान अल्लाह कहना भी सही है, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया। फिर अपने फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, इसमें अपने अजीजों से, अपने करीबी लोगों से अगर इंसान कोई मशवरा कर ले तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। जैसे आपसे सरम ने हजरत अली से किया, हजरत उमर से किया, बरीरा से किया। फिर इस तरह किसी तोहमत के मुतल्लिक तहकीक और तफ्तीश करना, ये भी हमें पता चलता है। वैसे हमें बिला जरूरत किसी के बारे में तजस्सुस नहीं करना चाहिए और इसे मना किया गया, लेकिन तोहमत अगर किसी की लगी और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह अगर कोई हादसा पेश आया है तो उसके बारे में इमाम जो होते हैं वो लोगों से खिताब कर सकते हैं, जैसे आपसे सलम ने किया था। इसी तरह हजरत सफवान बिन मुअत्तल के फजाइल जो नबी सलम की शहादत से पता चलते हैं, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी जो आपसे सलम ने फरमाया, तो ये हमें पता चलता है कि ये दोनों पाक थे। और साद बिन मुआज और उसैद बिन हजीर के बारे में पता चलता है कि उसैर के बारे में पता चलता है कि वो उनकी फजीलत कितनी थी। और ये भी हमें पता चला कि बाज दफा इंसान को फितनों को बंद करने के लिए बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे अब लोग कह रहे हैं कि हम बदला लेते हैं, लेकिन आपसे सलम ने जब देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये तो एक जंग शुरू हो जाएगी, तो आपसे सलम ने खामोश हो गए। फिर ये नहीं कहा उनको कि नहीं तुम उसको पकड़ के लाओ अब्दुल्लाह बिन उबई को और उसकी गर्दन उड़ा दो और ऐसे कर दो। अब तो लोगों के जोश और बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उसको ठंडा करना चाहिए, बड़ी मसलहत देखनी चाहिए, ना कि फौरन खुद भी जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला दे दें। फिर तौबा की तरफ लोगों को बुलाना चाहिए। फिर बड़ों की मौजूदगी में छोटों को बड़ों के तरफ पहले कलाम करने को करना चाहिए कि आप पहले बात बताइए। जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने वालदैन से फरमाया कि आप कोई बात का जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो छोटी थी, ये बड़े हैं। फिर इस तरह कुरान पाक की आयात से भी हवाला दे सकते हैं, जैसे उन्होंने फरमाया कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था, तो कुरान पाक की आयात से आप कोई बात की शहादत दे सकते हैं। तो इसी तरह जिसको भी कोई नेमत मिले या कोई मुसीबत दूर हो उसको भी मुबारकबाद देना, यहाँ से पता चलता है कि जैसे उन्होंने मुबारकबाद दी कि भाई आपकी बरात में अल्लाह ताला ने आपको बरी कर दिया, जैसे आपसे सलम ने उनको फरमाया। फिर इसी तरह इस कोई आपको नेमत मिले, कोई खुशी की खबर मिले, तो उस पर फौरन शुक्र अदा करना। जैसे उन्होंने, वालदैन ने कहा कि आप शुक्रिया अदा करें, तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, अब जो भी ये चीजें होती हैं ना, आप कई वाकयात ऐसे पढ़ेंगे वो जो उम्महातुल मोमिनीन और आप सल्लम के दरमियान हुए, तो ये याद रखिएगा कि वो आपस में मियाँ बीवी हैं, वो एक दूसरे को बात कह सकते हैं कि मैं इनका नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। और ऐसे हमारे लिए कोई भी किसी तरह से जायज नहीं कि हम जुबानें खोलें इन चीजों के बारे में, ठीक है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आप ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को अल्लाह तआला ने साहिब फजल करार दिया, तो इससे उनकी फजीलत पता चलती है ना, जहाँ पे ये आया कि उलुल फजल, जो फजल वाले हैं, जो बड़े दर्जे वाले हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनको दर्जे वाला करार दिया है कुरान में। फिर हमें पता चलता है कि रिश्तेदार अगर बदसलूकी करें तो फिर भी उनके साथ हुस्ने सलूक करना, ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बातें बता रही ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें रिश्तेदारों की तरफ से या किसी और की तरफ से बदसलूकी हमें मिले, तो फिर हम माफ कर दें और दरगुजर कर दें, नहीं तो बहुत आला अखलाक है। फिर हम नेकी के रास्ते में सदका खैरात करना करने से रुकने की कभी भी आप नियत ना करें, कभी भी ये कसम ना खाएं। अगर खा लियो तो उसका कफारा देके दोबारा उस नेकी को कर लें। फिर हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला की फजीलत भी पता चलती है, और फिर हमें आयशा रजी अल्लाह तआला के अखलाक का भी पता चलता है, क्योंकि जब हजरत हसन के तोहमत लगाने के बावजूद आयशा रजी अल्लाह तआला उनकी तरफ से दिफा करती हैं। फिर इसी तरह मुसलमानों का अपने अमीर के घर वालों की इज्जत के लिए गजबनाक होना पता चलता है, साद बिन मुआज और दीगर सहाबा गजबनाक हुए कि क्यों ऐसे किया गया। फिर औरतें भी दूसरी औरत के बारे में उसकी नेकी की गवाही दे सकती हैं, जैसे हज़रत बरीरा और हज़रत ज़ैनब ने दी थी। इसी तरह जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपकी बीवी या आपकी इज्जत के मुतल्लिक कोई बुरी बात करे, तो आप देख लें कि आज की आयात में कितनी बड़ी बात है, कि ये समझ लें कि कुरान का उसने इनकार कर दिया जिसने आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर कोई बात की, क्योंकि कुरान उनकी बरात और उनकी पाकी की गवाही दे रहा है। फिर सब्रे जमील की दुनिया और आखिरत में तारीफ की गई कि सब्र कितनी जबरदस्त चीज है। फिर जिस शख्स के ऊपर हद लगाने से कोई तफरका पैदा हो जाए या इंतशार पैदा हो जाए या बहुत बड़ी कोई झगड़ा जंग खड़ी होने का खदशा हो, तो फिर उस पर हद ना लगाई जाए, जैसे आपसे सलम ने अब्दुल्ला बिन उबई पर नहीं लगाई थी। भी अगर कोई गलत इल्जाम है तो ये उसका एतराफ करना, यानी एक बंदे ने नहीं किया हुआ लेकिन कह देना अच्छा चलो जान छुड़ाने के लिए कि अच्छा चलो मैंने किया, ये सही नहीं है। जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि अगर मैं गुनाह का एतराफ कर लूँ आप सारे मान जाएंगे, लेकिन अल्लाह को पता है कि मैं इसे बरी जिम्मा हूँ। और फिर इसी तरह वही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे नहीं है कि जब चाहे वही आ जाए, वरना एक महीना ना लगता, इसी से आपकी नबुवत की दलील मिल जाती है। एक महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक परेशानी के आलम में, एक स्ट्रेस में रहे, तो वही आपके हाथ में नहीं थी। फिर औरतें हार वगैरह पहन सकती हैं, जैसे सीपियों का हार है, मोती का हार है, ये जेवरात पहनना जायज़ है। फिर इसी तरह किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करने के लिए इंसान को जाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये सारी बातें और भी बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अभी हमें ये भी पता चलता है कि किसी के बारे में जो खबर मशहूर भी हो जाए उसके बारे में भी तहकीक करना दुरुस्त है, कि इंसान तहकीक करे, तहकीक के बगैर कोई भी बात को करना सही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और ये पढ़ना हमारा, और अल्लाह ताला इन फोहशा से हमें महफूज रखे और हमारे मुआशरों को, और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम किसी भी फोहश काम में अपना हिस्सा ना डालें, और ख़ास तौर पे उसको फैलाने में, उसको आगे पहुंचाने में किसी किस्म की फोहशा का हम हिस्सा ना बने और ना हमारे घर वाले, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने घरों को भी हम पाक करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी तिलावत सुनिए।
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.